वचन प्रेमी माताओं बहनों और भाई,
संत वाणी में हमने जीवन का सत्य सुना और उस सत्य के अनुसरण की विधि को भी सुना। कितनी सरल बात है और उसका संबंध सबसे ऊंचे जीवन से है, इस पर महाराज जी ने हमारा ध्यान दिलाया। धर्मात्मा होना हम सभी भाई बहनों के लिए संभव है, अनिवार्य है, दोनों ही बातें हैं। अनिवार्य भी है और संभव भी है। धर्मात्मा होने का व्रत क्या बताया कि सबके प्रति स्नेह और सद्भाव और सहयोग, जो सभी के लिए हृदय में सद्भाव रखता है, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, कोई दुखी न रहे, किसी का कल्याण न हो, सबको सद्बुद्धि मिले, सबका कल्याण हो, तो इस प्रकार की सद्भावना जिसके जीवन में रहती है वो सबके प्रति सहयोग देने को भी तैयार रहता है। तो हृदय में सद्भावना हो और व्यवहार में सबके लिए सहयोग हो, बिल्कुल व्यवहारिक स्तर की बात मालूम होती है। ऐसा लगता है कि भाई समूह में रहने वालों के लिए ये एक व्यवहार का तरीका है, लेकिन इसका बड़ा गहरा संबंध है आध्यात्मिक जीवन से। अनुभव करने पर ही इसका पता लग सकता है कि जो लोग जगत के नाते, आत्मा के नाते, परमात्मा के नाते, किसी भी नाते से सबके प्रति सद्भाव और सहयोग रखने लग जाते हैं, उनके में बड़ी भारी शक्ति आ जाती है। कौन सी शक्ति? कि वे स्वयं अपने लिए संसार की आवश्यकता अनुभव नहीं करते। बहुत बड़ी बात है। ऐसा तो हम सभी लोग सोच सकते हैं कि सबके प्रति सद्भाव रखो और सहयोग देने की मनोवृत्ति रखो तो इससे सुंदर समाज का निर्माण हो जाएगा। ये परिणाम तो सबको साफ दिखाई देता है कि जितने भी हम सब लोग मानव हैं और समझ बूझ रखते हैं, सचेत हैं, सुंदर समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो उनके लिए महाराज जी ने मंत्र बताया कि सबके प्रति सद्भाव और सहयोग रखो। और सचमुच अगर किसी भी मनुष्य के भीतर दूसरे के प्रति दुर्भावना और नुकसान पहुंचाने की बात न रहे तो समाज में से बुराई का अंत हो जाए, खत्म ही हो जाएगा। क्योंकि बुरे संकल्प पहले हमारे भीतर उपजते हैं, तब वे बाहर में जाकर के कहीं पर किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मनुष्य अपने धर्म से पहले च्युत हो जाता है, तब समाज में दुख का सृजन होता है। एक दिन एक बीमार की बात मुझको बता रहे थे लोग, तो कह रहे थे कि 30 इंजेक्शन उसको लगे, किसी के बारे में कह रहे थे, और 29 इंजेक्शन लग गए थे, तब तक रोगी की हालत बिल्कुल ठीक थी, टेटनस था कि क्या था ऐसे कुछ था, और 30वां लगा तो उसका रिएक्शन ऐसा हुआ कि रोगी वहीं खत्म हो गया। तो एक ही बैच में से एक ही बार का मंगाया हुआ, एक ही डिब्बे में इतने इंजेक्शन रखे थे और नर्स निकाल निकाल करके इंजेक्शन लगाती जा रही थी और ऐसा हो गया। तो उसमें अब हम लोग उस दवाई का क्या दोष दें? मैंने सोचा तो मुझे लगा कि अगर मनुष्य अपने कर्तव्य से च्युत न होता, अगर गलत दवाइयों का निर्माण ही नहीं होता, रोगी के प्रति दवा बनाने वाले का ख्याल होता कि बीमार शरीरों को मदद देने के लिए दवाई बनानी है, तो गलत दवाइयों का निर्माण नहीं होता और रोग मिटाने की जगह पर दवाइयां प्राण न लेती, तो भूल कहाँ हुई? ऐसा सोचने से लगता है कि मनुष्य स्वयं जब धर्म से च्युत हो जाता है तो समाज में अनेक प्रकार के दुखों का सृजन होता है। ऐसे ही सब एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, ट्रेन के भी, बस के भी, तो उसमें भी मुझे लगता है कि अगर दो दो ट्रेन आपस में लड़ गई, भिड़ गई, एक्सीडेंट हो गया, बहुत से लोग मर गए, तो अब उसमें गाड़ियों का तो कोई दोष है नहीं, फिर हम होते हैं उसके चलाने वाले। तो अपने धर्म के प्रति हम सजग होते, कर्तव्य के प्रति सजग होते, किसी तरह की कोई असावधानी हम नहीं करते, तो आज इतनी अधिक संख्या में जगह जगह पर दुर्घटनाएं हो रही हैं और हजारों हजार लोग पीड़ित हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। तो कहीं भी आप देखिए, खाद्य पदार्थों की खराबी से बीमारियां बढ़ जाएं और दवाइयों की खराबियों से बहुत से लोगों का देहांत हो जाए, तो इन सबके भीतर किसका दोष दिखाई देता है? ये मनुष्य का दोष दिखाई देता है। तो विवेक का अनादर कर देना, कर्तव्य की ओर से लापरवाह हो जाना, अपने धर्म से च्युत हो जाना, इसी के कारण समाज में इतनी प्रकार की तकलीफें दिन नित नई उत्पन्न होती रहती हैं। तो आध्यात्मिक विकास के लिए और संसार के राग से मुक्त होने के लिए, संसार के ऋण से उऋण होने के लिए, संसार की दासता से मुक्त होने के लिए पहली बात है साधक के जीवन में कि वो धर्मात्मा बने। और धर्मात्मा बनने का पहला शर्त है कि हमें सबके प्रति सद्भाव और सहयोग रखना चाहिए। सरदार शहर में एक दिन इसकी चर्चा हो रही थी तो मैं ऐसे बता रही थी कि भाई दूसरों के प्रति जो हम लोग कुछ अपकार करते हैं तो बल के अभिमान में आकर अपकार करते हैं। जो निर्बल होता है वह तो किसी का अपकार कर ही नहीं सकता, साहसी नहीं होगा उसका, डरेगा, उसमें सामर्थ्य नहीं है, तो निर्बल आदमी तो ऐसा करता नहीं है। और सबल आदमी अगर विवेक के प्रकाश में चलता है तो वो प्राप्त बल का दुरुपयोग कभी करता ही नहीं है, जब करेगा तो किसी की सहायता ही करेगा, सहयोग ही देगा। तो बलवान है और विवेक विरोधी है, विवेक के प्रकाश का आदर नहीं करता, तो बल के अभिमान में आकर के वो तकलीफ पहुंचाता है दूसरों को। तो उसको ऐसा लगता है कि हम तो ऐसा नुकसान कर दे सकते हैं, हम तो इनको पाठ पढ़ा दे सकते हैं, हम तो इनको मजा चखा दे सकते हैं। तो उसे ऐसा लगता है कि हमारे जैसे बलवान के साथ इन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया, इनको हमारे बल का पता नहीं है, अभी हम इनको दिखाते हैं। ऐसा करके जो दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचाने के लायक व्यवहार कर देता है तो वो बल का अभिमानी अपना जितना नुकसान करता है उतना दूसरे का नहीं कर सकता। अपना नुकसान क्या हुआ कि उसकी बल की तो हानि हो गई, क्योंकि प्रकृति का दिया हुआ बल है, प्रकृति की शक्ति से वह शक्तिमान हुआ है, और प्रकृति के प्राणियों को कष्ट पहुंचाने में बल का उपयोग कर दिया जाए तो वो जिस खजाने से बल आ रहा था वहीं का दरवाजा बंद होता है। आसानी से ये बात सब लोग समझते भी नहीं है, मानते भी नहीं है, गुरुजी महाराज ने इसको बहुत विस्तार से बताया है हम लोगों को। तो एक क्षति ये हो गई। दूसरी क्षति, उससे भी बड़ी क्षति क्या हो गई, बल कम हो गया, ये तो भौतिक हानि हो गई, और उससे भी बड़ा नुकसान क्या हो गया कि जीवन मिला था संसार में, संसार की दासता से मुक्त होने के लिए, पराधीनता से मुक्त होने के लिए, शांति और जीवन मुक्ति को पाने के लिए, इसके लिए जीवन मिला था, तो ये उद्देश्य ही नष्ट हो गया। क्या हो गया कि सबके प्रति सद्भाव और सहयोग का जो आचरण है, धर्माचरण जिसको कहेंगे, उससे हट जाने का ये फल होता है कि संसार की दासता जीवन में से निकलती नहीं है। तो बड़ा भारी नुकसान उसका हो गया कि जीवन मुक्ति की साधना ही वो नहीं कर सकेगा। न ध्यान लगा सकेगा, न शांत रह सकेगा, न देह के अभिमान से छूट सकेगा, न संसार की पराधीनता से छूट सकेगा। ऐसी चर्चा मैं कर रही थी और इसके संबंध में अपना एक उदाहरण सुनाया था मैंने। स्वामी जी महाराज से मेरी बात हुई थी तो परीक्षक बन करके परीक्षार्थियों के कि उत्तर पुस्तिकाओं के साथ कैसे क्या करना चाहिए, ऐसे मैंने कुछ प्रश्न किया था कि महाराज समय भी कम मिलता है, काम भी ज्यादा रहता है, ठीक तरह से ना करो तो भीतर अच्छा भी नहीं लगता है, देर हो जाए तो नौट झंझट खड़ा होता है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो सब तो यूनिवर्सिटी का जो नियम कानून है उसे जहाँ है वहाँ है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि अगर इस काम के करने में, चाहे किसी भी काम के करने में लापरवाही की गई, असावधानी की गई, जल्दीबाजी की गई, ठीक तरह से नहीं किया गया तो कार्य करने में अगर भूल रह जाएगी तो करने का राग नहीं मिटेगा। बड़ी जोरदार बात है। सब लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, शुद्ध काम करो और निष्काम कर्म करो और ऐसे कर्म करो वैसे कर्म करो, बहुत सी बातें हैं कर्म के संबंध में। लेकिन जब मैंने ये सुना कि छोटा से छोटा काम क्यों न हो अगर राग निवृत्ति की साधना के रूप में करने का है तो उसको पूरी तरह से सही ढंग से करना जरूरी है, और अगर गलत सलत ढंग से छोटा समझ करके लापरवाही के साथ किया गया, गलती सलती करके खत्म किया गया, ऊपर से ज्योति पूरा करके, तो उसका एक बड़ा भारी दुष्परिणाम यह होगा कि काम करते करते करने की शक्ति खत्म हो जाएगी और करने का राग नहीं मिटेगा। तो कुछ विचारक लोग आए थे, स्कूल और कॉलेज के अध्यापक लोग भी आए थे, कुछ कम्युनिस्ट विचार रखने वाले नई उम्र के टीचर लोग भी सब आए थे। तो उन्होंने बहुत पसंद किया, कहा ऐसी बात तो हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था, मामूली काम दिखाई देता है ऊपर से और कौन देखता है कौन जानता है, ज्यों त्यों करके किसी तरह से पूरा कर दिया, खत्म हो गया, छुट्टी पाए। तो उस छोटे से काम के लिए, थोड़ी देर के झंझट से छुट्टी पाने के लिए अगर गलत सलत तरीके से करके ढक ढुक के छुट्टी कर दिया तो बहुत दिनों के लिए संसार की आसक्ति में और राग में बंधे हुए रह गए। बहुत बड़ी बात है, झाड़ू लगाने का काम है, जल पिलाने का काम है, रसोई बनाने का काम है, घर संभालने का काम है, कुछ भी काम है तो मनुष्य के लिए हर काम सावधानी से करने का है और पवित्र भाव से करने का है। तो भाव की पवित्रता में महाराज जी ने सद्भाव को प्रधानता दी कि भाई किसी का किसी प्रकार से मेरे द्वारा नुकसान न हो, सब सबके हित की भावना दिल में रहे तो हमारा कार्य जो है वो दूसरों के लिए हितकारी भी सिद्ध होगा और दूसरों के लिए तो बहुत मामूली लाभ पहुंचाएगा, लेकिन अपने लिए बहुत बड़ा लाभ ये होगा कि हम करने के राग से छूट जाएंगे, तब शरीर का मोह भी छूट जाएगा, तब संसार की आवश्यकता भी अपने लिए नहीं रहेगी। अब ऐसा सोच करके देखिए कि अनेकों बार समूह में रहते हुए बहुत सी बातों को हम लोग सब देखते भी रहते हैं, चलते भी रहते हैं, करते भी रहते हैं, बातें भी होती रहती हैं और बर्दाश्त भी करते रहते हैं, क्या बात है। तो समूह में रहना अपने लिए बहुत जरूरी मालूम होता है, सबके सहयोग के साथ शरीर को निर्वाह कराने की बात बहुत जरूरी मालूम होती है। कई बार मैंने वृद्ध जनों को देखा है कि नई पीढ़ी की बहुत सी बातें उनको ना पसंद हैं, फिर भी इस चिंता के मारे कि लड़कों का पोतों का विरोध किया जाएगा तो ये लोग हमारी देखभाल करना छोड़ देंगे तो मेरा निर्वाह कैसे होगा, तो ऐसा सोच करके विवेक विरोधी बातों का भी समर्थन करते रहते हैं। ये क्या है, ये इस दशा का परिणाम है कि हमारी शक्ति तो चली गई और संसार की आवश्यकता मुझसे नहीं गई। शरीर असमर्थ हो गया और शरीर को संभाल कर रखने की जरूरत मेरी खत्म नहीं हुई। इसके लिए महाराज जी ने कहा कि धर्मात्मा होना सबके सबको अनिवार्य है और सबके प्रति सद्भाव और सबको सहयोग देने की बात जिस जीवन में है उसका राग भी समाप्त हो जाता है और शरीर की संसार की अपने लिए जरूरत नहीं रह जाती, तो इसी का नाम जीवन मुक्ति है। अब जैसे विनोबा बाबा के लिए हम लोगों ने सुना ना, और दूसरे संतों के लिए सुना भी है, अपने महाराज जी को देखा भी है। डॉक्टर लोग से पूछ रहे हैं कि भैया बताओ तो कब तक इसको रखोगे, डॉक्टर लोग बेचारे क्या कहेंगे। अब चका जाते कहते कि महाराज जी हम लोग बहुत दिन तक रखेंगे, तो हंस के कहते कि अरे भाई तुम नहीं जानते हो, अब ये रखने के लायक नहीं है। तो रखने के लायक नहीं है तो आनंद पूर्वक उसका त्याग कर दो। ऐसे ही विनोबा बाबा के लिए सुना गया कि भाई दवा नहीं लिया, खुराक नहीं लिया, सब छोड़ दिया, डॉक्टरों ने मित्रों ने सबने आग्रह किया तो कह दिया भाई अब ये रखने के लायक नहीं है, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, समाज की सेवा के लिए इसको रखा जा रहा था, तो समाज की सेवा के लायक नहीं रहा तो छोड़ दो, अब पकाए के लिए पकड़े रहो। तो अपने को जरूरत नहीं है तब हम उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं। इतनी बात पूरी हो जाती है किसके जीवन में, किसके जीवन में सबके प्रति सद्भाव और सहयोग देने की बात रहती है। मिलिट्री डॉक्टर एक बार मिले थे मुझको रांची में, जान पहचान के व्यक्ति थे, तो सुना रहे थे, कह रहे थे कि मैं क्या बताऊं, मेरा हृदय कांप जाता है, युद्ध क्षेत्र से सिपाही आते हैं तो हाथ कट गए, पांव कट गए, कुछ नहीं रहा, बस खाली सिर से लेकर इतना सा मांस का लोथड़ा, और आए सबको रखना पड़ता है, सबकी सेवा करनी पड़ती है, तो कटकुट गया वो तो निकल ही गया लेकिन घाव ठीक हो जाए इसके लिए हम लोग उनको उनका ड्रेसिंग भी करते हैं, इंजेक्शन भी लगाते हैं, दवाई भी देते हैं, सब किया जाता है, और जल्दी से घाव भर जाए इसका इंतजाम किया जाता है कि दर्द पीड़ा से ये मुक्त हो जाए, तो उनको पथ्य दिया जाता है जिसमें मिर्चाई भी ज्यादा ना हो, मिठाई भी ज्यादा ना हो, ऐसा खाना दिया जाता है कि जिसको खाने से घाव भरने में जल्दी मदद मिले। तो कहें कि बड़ा दुख होता है मुझे कि बिस्तर में पड़े हैं, टट्टी पेशाब सब बात के लिए पराधीन है, हाथ पांव कट गए, किसी दिन चल नहीं सकेंगे, किसी दिन घूम फिर नहीं सकेंगे, कुछ भी कर नहीं सकेंगे, और फिर भी उनको जीने का इतना शौक कि हर प्रकार से परेशान रहते हैं कि कैसे जल्दी घाव भर जाए, कैसे ठीक हो जाए, फिर भी वो शरीर से सुख भोगने के इतने गुलाम हैं कि स्वीपर से मंगा करके बाहर से मांस पकाया हुआ खरीदवा के मंगा लेते हैं और खा लेते हैं, और बना बनाया घाव फिर बिगड़ने लगता है, फिर सड़ने लगता है, फिर तरदुद होने लग जाता है। तो डॉक्टर बेचारा बहुत हृदयशील आदमी था, तो उसके आंख में आंसू भर जाए और कहे कि हमारी समझ में नहीं आता है कि ये मांस के लोथड़े जीना क्यों चाहते हैं, जाता है ये भी कट गया है, ये भी कट गया है, अब कुछ है नहीं, चलना फिरना नहीं होगा, कमाना नहीं होगा, किसी के काम आना नहीं होगा, और हर बात के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ेगा, तब भी चाहिए शरीर, चाहिए क्यों चाहिए कि हाथ पांव कट गया तो क्या हुआ, पराधीन हो गए तो क्या हुआ, कुछ देखने का सुख ले लेंगे, कुछ खाने का सुख ले लेंगे, तो कितनी घोर पराधीनता है समझो। ऐसी दुर्दशा में भी शरीर को रखना पसंद आता है, तो इसी से मालूम होता है कि शरीर की कितनी दासता उनके भीतर अभी तक शेष रह गई। इस दासता को मिटाने का उपाय महाराज जी ने बताया कि भाई बुराई किसी के साथ करो मत, और सबके प्रति सहयोग और सद्भाव रखो, तो एक विलक्षण शक्ति पैदा होगी। वो विलक्षण शक्ति क्या है कि बिना किसी ध्यान धारणा समाधि के और बिना किसी विशेष अभ्यास के आपके भीतर से ही एक बल अभिव्यक्त हो जाएगा कि जिसमें आपको अपने लिए शरीर और संसार की जरूरत नहीं रहेगी। तो कितना सामान्य व्यवहार के स्तर का व्रत दिलाया महाराज जी ने, और कैसे अलौकिक जीवन का दरवाजा जैसे खोल दिया। आप सोच करके देखिए ना, कितना आराम लगेगा, अपने को शरीर और संसार की जरूरत न रह गई, कितना आराम लगेगा, स्वाधीन हो जाएगा आदमी एकदम, कोई जरूरत ही नहीं रह गई। तो इतने में लोक संग्रह, लोक सेवा और जीवन मुक्ति, ये दो बातें तो इतने में सिद्ध हो गई। और तीसरी बात जो रह गई, स्वामी जी महाराज ने जिसको विशेष रूप से एक स्वतंत्र साधन प्रणाली के रूप में हम लोगों के सामने रखा, यद्यपि विचार के आधार पर भी जब नाशवान से संबंध टूट जाता है, वृत्ति बाहर से सिमटकर अंदर अंतर्मुख हो जाती है, अपने उद्गम से जुट जाती है, तब भी जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति हो जाती है। परमात्मा को मान के चलो तो, न मान के चलो तो, साकार की उपासना करो तो, निराकार की उपासना करो तो, उसमें कोई भेद नहीं है। चाहे परमात्मा को मानो चाहे न मानो, केवल विवेक के प्रकाश में जो त्याज्य है उसका त्याग कर दिया, और बाहर से सब वृत्तियों को समेट कर भीतर एक एक उद्गम में केंद्रीभूत कर दिया, तो उस सत्य से जब जीवनी शक्ति जुट जाती है तो उसमें भी नित्यता अभिव्यक्त होता है। जिस जीवन में नाश नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी, सर्व दुखों का अंत हो जाता है, आनंदमय अस्तित्व अनुभव में आता है, और उसमें प्रेम भाव की सरसता भी रहती है। तो ऐसा विचारक जन की साधना का भी परिणाम होता है, और अगर उस विचार के साथ साथ विश्वास भी चल रहा है, जैसा कि हम लोगों में से अधिकांश भाई बहनों का जीवन है, विचार के आधार पर असत के संग से छूटना ये तो अनिवार्य है ही है, उसके साथ आस्था श्रद्धा विश्वास का तत्व जो हमारे जीवन में है, उससे भी काम लेने की बात स्वामी जी महाराज ने बताई, और ये कहा कि पहले प्रभु की सत्ता में विश्वास करो। साकार निराकार का भेद नहीं है, परमात्मा है तो है मानो, कैसा है तो महाराज जी की परिभाषा बहुत बढ़िया है, वो कहते हैं कि जैसा तुमने सुना है ऐसा भी है, जैसा तुम पसंद करते हो ऐसा भी है, जितना जितना दूसरे लोगों ने अनुभव किया है, कहा है और ग्रंथों में लिखा है उतना भी है, और सबसे विलक्षण भी है। ग्रंथों में जितना लिखा गया है और जितने अनुभवी जनों ने अपने अनुभव से जितना बताया है, तो जितना कहा गया, जितना सुना गया, जितना अनुभव किया गया, जितना ग्रंथों में लिखा गया, उतना भी है और उससे भी लक्षण भी है। बहुत अच्छी लगी बात मुझे, इसलिए मान लीजिए कि परमात्मा के संबंध में आपका अनुभव कुछ ऐसा निकल आया जैसा कि कहीं भी किसी ने नहीं कहा हो, कहीं भी न लिखा हो, तो आप कहेंगे कि क्या जाने ये अनुभव ठीक है कि गलत है, ऐसा तो कहीं किसी ने कहा ही नहीं, कहीं लिखा ही नहीं। तो सो महाराज जी कहते हैं कि भाई जब वे अनंत गुणवान कहलाते हैं कि उनके गुणों की कोई सीमा ही नहीं है, तो तुम सीमा बांधना क्यों पसंद करते हो, ये कहना क्यों पसंद करते हो कि वे निराकार हैं, ये कहना क्यों पसंद करते हो कि वे साकार हैं, ये क्यों पसंद करते हो कि वे निर्गुण निराकार हैं, कि सगुण साकार हैं, ये क्यों नहीं पसंद करते हो कि मुझे जितना मालूम है और स्वभाव से मुझको जितना पसंद है उतना भी है और उससे विलक्षण भी है। ये कहा उन्होंने, ऐसा मान करके अपने को जो पसंद आवे, साकार परमात्मा पसंद आवे तो साकार सही, और निराकार पसंद आवे तो निराकार सही, उसकी सत्ता को मान लिया जाए, उसमें विश्वास किया जाए, उसकी महिमा को स्वीकार किया जाए, तो आस्था श्रद्धा विश्वास पूर्वक उनसे अपना सीधा संबंध स्वीकार करने मात्र से उनके स्वरूप की, उनकी विभूतियों की अभिव्यक्ति मनुष्य के जीवन में होने लगती है। वही अपने को सरस बनाती है, उसी से जीवन में रस का संचार होता है। उस रस का संचार होता है कि जिसका कभी नाश नहीं होगा, जिससे कभी अरुचि नहीं होगी, उस रस का संचार उसमें होता है और जीवन पूर्ण होता है। तो इसको महाराज सत्य की स्वीकृति कहते हैं। क्योंकि अपने को ये बात पसंद है कि मुझसे सबल मेरे प्रति सद्भाव रखे और सहयोग दे, तो इसलिए दूसरों के प्रति सद्भाव और सहयोग रखना ये धर्म है, धर्मात्मा होना हो गया। और जो धर्मात्मा हो जाता है उसमें जीवन मुक्ति की सामर्थ्य आ जाती है, तो ये आध्यात्मिक विकास हो गया। और जो सचमुच किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रख सकता, वो प्रभु का प्यारा बनता है, प्रभु को प्रेम करने वाला होता है, तो ये आस्तिकता का विकास हो गया। तो एक ही मानव जीवन में जो करने की शक्ति है वो धर्म के साथ जुट गई तो हम धर्मात्मा हो गए। और जो विवेक की शक्ति है उसने मुझको असत्य से छुड़ा दिया तो हम जीवन मुक्त हो गए। और जो प्रेम करने का भाव है उससे हम प्रेम स्वरूप परमात्मा के साथ जुट गए तो जीवन सरस हो गया, आस्तिकता के पक्ष में उन्नति हो गई। तो इस तरह से सेवा, त्याग और प्रेम एक ही व्यक्तित्व के तीनों अलौकिक तत्व हैं कि जिनका कभी नाश नहीं होगा। सेवा के संबंध में महाराज जी ने ऐसा बताया है कि क्रिया तो सेवा का बाहरी रूप है, वास्तविक रूप क्या है कि जिसमें करुणा हो और जिसमें प्रसन्नता हो। तो सुखी को देखकर प्रसन्न होना, दुखी को देखकर करुणित होना, ये सेवा का स्रोत है। उस दिन जब बुमला बहन छक्कर यहाँ आई थी और स्वामी जी महाराज के संस्मरण सुना रही थी, तो कह रही थी कि सर्वोदय का अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था, स्वामी जी महाराज को सर्वोदय के नेताओं ने प्रेसिडेंट करके बुलाया था, प्रेसाइड करने गए थे महाराज। तो वहाँ जब बातचीत होने लगी, सेवा सेवा सेवा, सर्वोदय में तो सेवा ही खास बात है, तो होने लगी, तो लोगों ने स्वामी जी के सामने बातचीत की, तो महाराज जी ने पूछा कि भाई सेवा का स्रोत कहाँ है। जो कुछ आप लोग कर रहे हैं सर्वोदय के माध्यम से सेवा का, उसमें स्रोत कहाँ है। तो सब लोग सोचने लगे, किसी ने गांधी जी को बताया, किसी ने जयप्रकाश जी को बताया, इसी में से ये आया है। तो महाराज जी ने उनको बताया कि नहीं भाई, सेवा का स्रोत तो करुणा में है। तो जिस हृदय में पर पीड़ा से करुणा उमड़ती है उसी के द्वारा सेवा बनती है। तो ये करुणा जो है वो प्रभु प्रेम के समान ही अलौकिक तत्व है जिसका कि नाश नहीं होता। तो मनुष्य के व्यक्तित्व में जहाँ स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों के रूप में नाशवान संसार का भी एक पक्ष जुटा हुआ है, उसी जगह हमारे आपके व्यक्तित्व में विवेक के प्रकाश और प्रेम के भाव में अविनाशी तत्व भी मिला हुआ है। आज ही अपने को देखा जाए, जिस दशा में हम लोग सब बैठे हैं सत्य की चर्चा करने, इसी दशा में आप सोच करके मुझको बताइए कि जीवन तत्व अपने में विद्यमान है कि नहीं है। है ना?
जरूर।
तो शरीर का हिस्सा नहीं है और शरीर के नहीं रहने पर भी वो रहेगा। तो इस तरह से अविनाशी परमात्मा अभी इसी क्षण में हम लोगों के साथ विद्यमान है, ऐसा कहना चाहिए। ठीक है ना? अच्छा, उसी तरह से दूसरी बात देखो, ये सत्यम हो गया। अब दूसरी बात देखो, विवेक का प्रकाश इसी समय, जबकि विवेक विरोधी संबंधों को लेकर हम लोग संयोग के सुख और वियोग के घोर दुख में पड़े हुए हैं, जिस समय हम सभी भाई बहन संयोग के सुख और वियोग के दुख में पड़े हुए हैं, उस समय भी विवेक का प्रकाश अपने साथ है कि नहीं है?
है।
संयोग का सुख क्षणिक है, नाशवान है, आज दिखाई दे रहा है, कल मिट सकता है, इस बात को हम विवेक के प्रकाश में देखते हैं कि नहीं? देखते हैं। वियोग का घोर अथाह दुख अपने पर आ गया, उसमें भी नाशवान के नाश हो जाने के बाद वियोग के ताप में तपते रहना निरर्थक है, गया हुआ लौट करके आ नहीं सकता, बिगड़ा हुआ संयोग फिर बन नहीं सकता, इस बात की जानकारी अपने को है कि नहीं
है?
तो इसी समय, जिस समय हम विवेक के अनादर से संयोग जनित सुख और वियोग जनित दुख में पड़े हुए हैं, फिर भी विवेक का प्रकाश जो अलौकिक तत्व है उसका नाश मेरे भीतर से नहीं हुआ है, ठीक है, स्वयं अपने को गलत काम के साथ जुटा हुआ देखकर हम लोग अपने को क्षमा कर देते हैं, क्या करें भाई, परिस्थिति ऐसी बन गई, क्या करें, हमारे से संभाल में नहीं आया, हमने ऐसे कह दिया, हमने ऐसे कर दिया, तो अपने को हम लोग क्षमा कर लेते हैं। मालूम तो होता ही है कि ऐसा मुझको नहीं करना चाहिए था, मालूम होता है, विवेक के प्रकाश में दिखाई देता है, फिर भी क्षमा कर देते हैं, और कभी कभी नहीं भी दिखता है, ऐसा भी होता है कि व्यक्तित्व का मोह इतना जोरदार होता है, मेरे मुंह से जो बात निकल गई उसको तो सत्य प्रमाणित होना ही चाहिए, इस आग्रह के मारे कभी कभी अपनी भूल अपने को नहीं भी दिखती है, लेकिन उसी किस्म का भूल अगर दूसरा कोई करे तो दिखता है कि नहीं? जी दिखता है। तो इसका मतलब है ये कि ज्ञान के प्रकाश स्वरूप परमात्मा अभी भी इस क्षण में भी हम लोगों के साथ विद्यमान है। ज्ञान जिनका स्वरूप है, ज्ञान का अनंत प्रकाश जिनका स्वरूप है, वो परमात्मा ज्ञान के रूप में, विवेक के प्रकाश के रूप में इस क्षण में भी हमारे भीतर विद्यमान है, तो उसी में तो दिख रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। और ऐसे ही प्रेम का रस भी है भाई, जीवन अपने आप में सरस लगता है, और जब हम रस की हानि करने वाले, रस को मिटाने वाले व्यवहार में, संबंध में, विश्वास में फंस जाते हैं तो रस घट जाता है, लेकिन प्रेम भाव से शून्य किसी मनुष्य का जीवन हो ऐसा आपने कहीं नहीं पाया होगा, कहीं नहीं होता है। महाराज जी कहते कि भाई देखो, चोर डकैत जो होते हैं उनका भी अपना सब नियम कायदा होता है, तो दूसरों के लिए जो बड़े खूंखार होते हैं वे भी अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी मंडली के लिए बहुत कोमल होते हैं। एक कैदी के संबंध में महाराज जी बता रहे थे कि फांसी की सजा हो गई थी और जेलर के ऑर्डर से उस कैदी को ले जाना था फांसी देने की जगह पर, तो सिपाही आया तो उसका दोनों हाथ पकड़ करके खूब कस के बांध दिया, ले चलेंगे। तो जब कस के उसको बांधा तो दर्द होने लगा हाथ में, और वो जान रहा है कि अब मुझको ले जाया जा रहा है, अब गला कटेगा, फिर भी जब कस के बांधा गया उसके हाथ को, सिपाहियों ने लापरवाही की कि अब क्या, अब तो इनको काटना ही है, कौन बड़ी बात है, तो कस के बांधने से जब हाथ में कलाई में दर्द होने लगा तो आंखों में आंसू भर के कहता है सिपाही से कि भैया मैंने तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, इतना कस के क्यों बांधते हो? तो क्या मतलब है, उसको मालूम तो था ना कि मैंने दूसरों की हत्या की है और मुझको फांसी देने के लिए ले जा रहे हैं, तो गला कट ही जाना है, तो इतनी देर में कस के बांधा तो या ढीला बांधा तो इससे क्या मतलब, फिर भी अपने प्रति उसके भीतर कितनी कोमल भावना है, प्रार्थना करके सिपाही से कहने लगा कि भैया मैंने तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम इतना कस के क्यों बांधते हो? तो इस प्रकार की जो एक कोमल भावना है, इसी प्रकार का जो एक एक दूसरों के साथ प्रेम का प्रेम के आदान प्रदान की आशा है, वो किसी भी काल में किसी के भीतर से नष्ट नहीं होती है। परमात्मा ही प्रेम स्वरूप है और उसी का दिया हुआ प्रेम हम लोगों ने माता पिता से पाया, गुरुजनों से पाया, पशु पक्षियों से पाया, वनस्पति से पाया, प्रकृति से पाया, सब तरफ से सहयोग सद्भाव और प्रेम का व्यवहार जो एक समूह में रहने पर अपने को मिलता है, तो उसका सोर्स कहाँ है? ध्यान दिया कभी? उसका उद्गम कहाँ है? कभी ध्यान में आया? सोचो तो पता चलेगा। ये सब मिठास जो हम एक दूसरे के साथ ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठ करके, यात्री हो करके, प्लेटफॉर्म पर बैठ करके, जहाँ भी अपरिचित अपरिचित लोगों के साथ भी काम पड़ता है, रहना पड़ता है, उठना बैठना पड़ता है, मिलना जुलना पड़ता है, तो जहाँ भी कहीं आपने सहयोग और सद्भाव देखा होगा, मधुर व्यवहार देखा होगा, सहानुभूति पाई होगी, तो उस सबका आधार कहाँ है? वही प्रभु है। तो प्रेम स्वरूप परमात्मा हमारे भीतर सदैव विद्यमान है और उनकी विद्यमानता का प्रमाण है ये तीनों। हम अपने अपने जीवन के अस्तित्व को अनुभव कर रहे हैं कि मैं जीवित हूँ, मैं हूँ, तो ये भी उनके अस्तित्व का ही प्रभाव है। और विवेक के प्रकाश को भी हम अनुभव कर रहे हैं कि बहुत सामान्य भाव से भले बुरे का ज्ञान अपने को सब समय होता रहता है, तो ये प्रकाश स्वरूप परमात्मा का ही प्रकाश है। और दूसरों के लिए स्वयं मधुर बनना और दूसरों से मधुर व्यवहार की आशा करना और दूसरों के किए हुए मधुर व्यवहार को मधुरता के रूप में अपने भीतर अनुभव करना बड़ा मीठा लगता है। कोई मेरे प्रति स्नेह सहानुभूति रखने वाला हो और कुछ बोले अथवा न बोले, कुछ करे अथवा न करे, लेकिन उसके भीतर मेरे लिए स्नेह है, सहानुभूति है, तो इतनी ही बात आपको अच्छी लगती है कि नहीं लगती है? तो ये सब बातें उस परमात्मा में से ही हैं और इन इन तत्वों का कभी नाश नहीं होता। तो आज अनेक प्रकार के विकारों से घिरे हुए हम सब लोग इस धरती पर बैठे हैं, तब भी अपने को कभी भी परमात्मा की उपस्थिति से वंचित नहीं मानना चाहिए। ठीक है? तो सामर्थ्य की अभिव्यक्ति हो जाए, विवेक का प्रकाश पड़ जाए और प्रेम का रस इतना बढ़ जाए कि जन्म जन्मांतर का सब विकार उसमें धुल जाए, हम शुद्ध होकर, पवित्र होकर, प्रेम स्वरूप होकर परमात्मा से अभिन्न हो जाएं, यही हमारे जीवन का प्रोग्राम है और इसी दिशा में हम सब भाई बहनों को सचेत होना है।